समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों का नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार, महानगरों का हाल जानेंगे, मौसम की बात करेंगे, इतिहास में दर्ज कुछ घटनाओं का जिक्र भी करेंगे और याद करेंगे साहित्यकार धर्मवीर भारती जैसी कुछ जानी मानी हस्तियों को। आज के संघ के साथ मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अलॉन्ग लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। Into the freshness of this particular morning, as lots of interesting stuff is coming your way. We have latest national and international news. We'll be sharing metro city updates with you, and we'll take you back in time in history. So, dear listeners, make sure to stick around till the end and be ready for an information explosion. But first, let's begin with the headlines. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Brunei Sultan Haji Hassan Al Bolkiah today. The discussions are likely to touch upon all aspects of bilateral relations and also explore new areas of cooperation. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks. Mr. Modi reached Bandar Seri Begawan yesterday on the first leg of his two-nation tour to Brunei and Singapore. Upon arrival, Prime Minister was accorded a ceremonial welcome and received by Crown Prince and Senior Minister in the Prime Minister's office at Brunei, Haji Al-Muhtadi Billah. This is the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with the 40th anniversary of the establishment of diplomatic ties between India and Brunei. Yesterday, Prime Minister Modi inaugurated the new Chancery of the High Commission of India in Bandar Seri Begawan. He also visited the Omar Ali Saifuddin Mosque in Brunei. Prime Minister Modi will head for Singapore later today for the second leg of his two-nation visit at the invitation of his counterpart, Lawrence Wong. The leaders will review the progress of the India-Singapore strategic partnership and exchange views on regional and global issues of mutual interest. He will be visiting Singapore after nearly 6 years. India has robust defense cooperation with Singapore, and trade and investment flows have shown steady growth. Singapore is India's largest trade partner in ASEAN and a leading source of foreign direct investment. President Draupadi Murmu will inaugurate the Vishwashanti Buddha Vihar at Udgir in Latur district of Maharashtra today. Governor C.P. Radhakrishnan, Chief Minister Eknath Shinde, Union Minister Ramdas Athawale and Deputy Chief Ministers Devendra Fadnavis and Ajit Pawar will be present on the occasion. President will also meet the beneficiaries of the Shasan Apar Ledari and Mukhyamantri Maji Ladki Bahin Yojana at the Udegiri College grounds. President Murmu will also visit Takht Sachkhand Shri Huzur Sahib Gurdwara in Nanded. She is on a 3-day visit to Maharashtra since Monday.
विश्व बैंक ने कहा है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि दृष्टिकोण सकारात्मक बनी हुई है। विश्व बैंक के नवीनतम भारत विकास रिपोर्ट बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास दर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। इसके 2025-26 और 2026-27 में भी मजबूत रहने की स्थिति है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.2% की तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत ने राष्ट्रीय रसद नीति और डिजिटल पहल के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया है, जिससे व्यापार लागत कम हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई। सुरक्षा बलों को इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त दल ने एंट्री गांव के पास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया। घटनास्थल से एक SLR राइफल और 2 अन्य राइफलें प्राप्त हुई हैं।
Now let's share the weather update with you all. Indian Meteorological Department IMD has issued an alert for heavy to very heavy rainfall in Gujarat, Konkan and Goa, Madhya Pradesh, Vidarbha, Saurashtra and Kutch and Chhattisgarh today. The weather department also forecasts light to moderate spell of rainfall over North Tamil Nadu, Rayalaseema adjoining Karnataka, Rajasthan, South Marathwada adjoining Telangana, South Haryana, West and Northeast Uttar Pradesh.
Heavy rainfall is also expected during the night in Uttarakhand, West Bihar, East Jharkhand, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. In Delhi, moderate rainfall was observed late last night. The IMD forecast that the city will experience a cloudy sky with light to moderate rain and thunder showers till 9th September.
और शगुन अब बात कर लेते हैं पेरिस पैरालंपिक की, तो कल भारत ने 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। दीप्ति जीवन जी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता, वहीं शरद कुमार ने रजत और मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की भाला F46 में भारत ने अजीत सिंह के रजत और सुंदर गुर्जर के कांस्य के साथ 2 पदक जीते। सातवें दिन भारतीय दल आज कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा।
Now let's talk about the day 7 events. The Indian contingent will be in action in multiple events today. Archer Harvinder Singh will be in focus alongside multiple track and field athletes on day 7 of Paris Paralympics. India will start their day with cycling, where Arshad Sheikh and Jyoti Gaderia are taking part in their respective events. The first medal event of the day will take place at 1:35 p.m. Indian time, with Sachin Khilari, Mohammad Yasir and Rohit Kumar participating in men's shot put F46 final. In powerlifting, Paramjit Kumar will eye a podium finish in men's 49 kg final. In shooting, Nihal Singh Rudransh Khandelwal will compete in mixed 50-meter pistol SH1 event. In archery, Arvinder Singh will face Seng Jun Si of Taipei in men's individual recurve open round of 32. Moreover, India have won a total of 20 medals, that includes 3 gold, 8 silver and 9 bronze.
Is we? इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक विजेताओं से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। और श्रोताओ, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की ओर, कर लेते हैं महानगरों का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों की।
वेल, लेट्स बिगिन विद चेन्नई फर्स्ट। Food Safety Officer Dr. P. Satish Kumar has said that officials of meat storage facilities should be taught how to store bones in hygienic conditions. The food safety officials conducted surprise checks in many eateries in certain areas of Chennai and recommended deburial after finding them being stored in unhygienic conditions. The samples were found to be positive for E. coli and Staphylococcus after being tested in the laboratory. A case was registered under the FSSAI Act for storing food under unsanitary conditions. Staying with Chennai, the Federation of Tamil Nadu Merchants and Manufacturers Association hosted an Indo-Sri Lanka business meet aimed at fostering business collaboration and innovation between India and Sri Lanka. 85 Sri Lankan business delegates spoke about the possibilities of having collaboration and other new areas of trade. President Vinod Nair spoke about the importance of cross-border collaboration and shared vision for growth and prosperity. Now let's turn our attention to Bengaluru. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar visited Chennai to study the Chennai model of waste management, especially the generation of gas from solid waste. He has said that the Chennai model has a lot to offer and some of these methods will be adopted in Bengaluru. Well, more news from Bengaluru. The South Western Railway's General Manager Arvind Srivastav inaugurated the state-of-the-art infrastructure essential for the maintenance of electric locomotives. The facility was inaugurated at the diesel shed in Hubali. This unit, built at a cost of 25.63 crore rupees, will ensure safe and reliable maintenance and operations of electric locomotives. These locomotives will be provided turn overhauling and intermediate overhauling. The new facility has heavy lifting bays, medium lifting bays with 25-ton EOT cranes, inspection shed, service building, plants and machinery. It has the capability to repair 50 electric locomotives back-to-back. Now let's focus on Hyderabad. Telangana government has constituted the Telangana Education Commission and issued a government order yesterday. This move comes as part of the government's commitment to improve the quality of education in the state, particularly in the context of declining student performance and inadequate preparation for current market demands.
The newly established Telangana Education Commission will prepare a comprehensive education policy from pre-primary classes to the university, including technical education. The commission will focus on evolving pedagogical practices, assessing learning outcomes, and adapting to dynamic changes in the education sector to ensure that the state's education system meets the needs of future generations. The objectives of the commission include advising the government on policy making, functioning as a think tank to address the changing educational landscape, and adding a value through brainstorming, pilot studies, and consultations. The key areas of focus are the universalization of early childhood education, ensuring quality education that fosters holistic development, enhancing employability skills through higher education, and promoting egalitarian values among students to prepare them as responsible global citizens. The commission will have a chairperson, 3 members specialized in the field of education, and a member secretary of the rank of the head of department to coordinate its activities. The commission will engage in extensive consultations with stakeholders, including experts and professionals, to formulate its recommendations. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now Farhat will be sharing the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
जी शगुन, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से। दिल्ली नगर निगम द्वारा राजधानी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए लगभग 100 नए पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम ने निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। निगम द्वारा जिन क्षेत्रों में नई पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जाएगा उनमें बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, अशोक विहार, शक्तिनगर, केशवपुरम सिविल लाइन, आजादपुर मंडी, जनकपुरी पूर्व मेट्रो स्टेशन, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन, लालकिला, हरदयाल लाइब्रेरी और आईआईटी गेट के पास जीएस राय शामिल हैं। निगम ने बताया है कि नए पार्किंग स्थलों में लगभग 4,500 वाहनों को खड़े करने की क्षमता होगी। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर है। निगम ने बताया है कि इन सभी पार्किंग स्थल का आवंटन मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए होगा। निगम द्वारा वर्तमान में दिल्ली में 400 से अधिक पार्किंग स्थलों का संचालन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली नगर निगम द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 14 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन होगा। निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम ने शहर के स्वच्छ बनाने के लिए विस्तृत योजना बनाई है। यह अभियान अगले महीने की 1 तारीख तक चलेगा। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू छात्र संघ का चुनाव इस महीने की 27 तारीख को होगा। मतदान 2 पालियों में सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक डाले जाएंगे। डीयू द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 17 सितंबर तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्याशी 18 सितंबर दोपहर 12 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतों की गणना 28 सितंबर को होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित शक्ति विधेयक को मंजूरी मिलने में हो रही देरी के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन किया। इस विधेयक में दुष्कर्म के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। ये विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया गया। मुंबई में राज्य सचिवालय के पास एक बैठक हुई जिसमें एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख भी मौजूद रहे। सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान अनिल देशमुख द्वारा पेश किए गए इस विधेयक को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने रोक दिया है। उन्होंने घोषणा की कि भारत गठबंधन इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री से मिलने की मांग करेगा। वहीं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में मुख्य संदिग्ध जयदीप आप्टे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मूर्तिकार आप्टे पिछले 8 दिनों से फरार है और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर के निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में मूर्तिकार जयदीप आप्टे और निर्माण सलाहकार डॉ चेतन पाटिल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रयास, सरकारी धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों के तहत स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की कई प्रमुख साहित्यिक, थिएटर और फिल्म हस्तियों ने आरजीकर अस्पताल मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें दिए गए सम्मान वापस करने की घोषणा की है। उनमें अभिनेता सुदीप्त चक्रवर्ती, थिएटर कलाकार विप्लव बंदोपाध्याय और प्रसिद्ध अभिनेता चंदन सेन शामिल हैं। हाल ही में हरिद्वारपुर जिले के शिक्षक परिमल डे ने इस घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार लौटा दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून कानून संशोधन विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ये कानून पिछले महीने राज्य सरकार द्वारा संचालित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मद्देनजर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विधेयक में मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया है और उन्होंने इसमें दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है, ये बात बताई। तो श्रोता, महानगरों की खबरों के बाद अब रुख कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो आज मौसम में बारिश हो सकती है, बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई की बात करें तो वहां पर भी बारिश का दौर रहेगा, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो शगुन, ये तो थे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल। कैसा रहेगा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम?
Yes, Farad. Going ahead with Chennai first, Chennai is expected to have a generally cloudy sky. The minimum temperature will be 26 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is again expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will have between a minimum of 22 degrees and a maximum of 26 degrees Celsius.
और अब अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 4 सितंबर 2024 और आज ही के दिन 1781 की अगर बात की जाए तो स्पेन के निवासियों द्वारा लॉस एंजलिस की स्थापना की गई थी।
Now talking about the year 1882, Thomas Edison supplied the first electricity to the first customers of the Edison Electric Illuminating Company in New York City. And in the year 1888, George Eastman patents the first roll film camera and registers the brand name Kodak. Over the following years, Eastman modified the chemistry and equipment to make photography easier. So easy even a child could take photographs. I mean, of course, even a child can take photographs for us. The company he founded, Eastman Kodak, ultimately revolutionized photography.
बिल्कुल शगुन, मुझे लगता है कि मैं अगर अपने दौर का याद करूं कि जब हम लोग बचपन में, तो कोडेक का कैमरा जो है वो सबसे पहले हमारे घर में आया था, उसी से ही तस्वीरें खींची जाती थी। और महत्व रहता था क्योंकि वो फोटोज हम लोग निकलवा सकते थे, लेकिन अब तो मोबाइल्स में, मोबाइल खराब तो यानी फोटोज सारी आपकी जो है वो डिलीट हो गए हैं।
राइट,
और अब आगे बढ़ते हैं, 1888 की बात कर लेते हैं। 4 सितंबर को ही महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा शुरू की थी और 1944 में आज ही के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने बेल्जियम के एंटवर्प शहर में प्रवेश किया।
इन द ईयर 1998 नाउ द पेयर ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेड्स फाइल्ड पेपरवर्क विद द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया टू ऑफिशियली क्रिएट गूगल, होपिंग टू टर्न देयर आइडियाज अबाउट सर्चिंग एंड इंडेक्सिंग द वर्ल्ड वाइड वेब इनटू अ प्रॉफिटेबल कंपनी।
सन 2000 में 4 सितंबर को ही सिडनी में 27वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। वहीं बात की जाए अगर सन 2001 की, तो आज ही के दिन श्रीलंका ने मुशर्रफ से सैन्य मदद मांगने का फैसला किया था और आज ही के दिन अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अफगानिस्तान पर सैनिक कार्रवाई की मंजूरी दी थी। और अब इतिहास के बाद याद कर लेते हैं कुछ मशहूर हस्तियों को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक और समाज शास्त्री भूपेंद्रनाथ दत्त की। ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। भूपेंद्रनाथ दत्त युवा काल में युगांतर आंदोलन से नजदीकी से जुड़े थे। अपनी गिरफ्तारी तक वे युगांतर पत्रिका के संपादक रहे। भूपेंद्रनाथ दो बार अखिल भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष भी रहे।
वेल, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टॉटी वेस्ट। This was stage name of the singer Dorothy Mary Marsh. She is a singer and songwriter in the field of, in the particular genre of country music. She also had several credits as an actress. She won Grammy Award in the year 1964 for her self-penned song, Here Comes My Baby. West, also a modern country pioneer in writing advertising jingles and a wide-ranging duet singer who recorded with many artists such as Jim Reeves, Dawn Gibson, Gene Dawn and Kenny Rogers. She was also known for mentoring up and coming artists. And for you listeners, we have this song in this actress's particular voice, which is really, really beautiful. So listen in.
But I was raised on country sunshine. I was raised on country sunshine. Green grass beneath my feet. running through fields of daisies, wading through the creek. You love me and it's inviting to go where life is more exciting. But I was raised on country sunshine. I was raised on country sunshine. I'm happy with the simple things. A Saturday night dance, a picture show, and the joy that the bluebird brings. I love you, please believe.
और अब हम याद कर रहे हैं जाने माने साहित्यकार धर्मवीर भारती को, जिनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1926 को प्रयागराज में। लेखन की शुरुआत कॉलेज के दिनों से हुई। बतौर कवि दूसरा सप्तक में शामिल किए जाने से पहले उनके एक उपन्यास, दो कहानी संग्रह, एक समीक्षा ग्रंथ और अनुवाद की किताब प्रकाशित हो चुकी है। वो एक अनुवादक के रूप में भी काफी प्रतिष्ठित रहे। उनकी गुनाहों का देवता और बहुत सारी जो साहित्यकार थे, कहानियां थी, वो लोकप्रिय हुई। अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा जैसी हिंदी जगत में अद्वितीय लोकप्रियता जीती रही।
वेल, हिज पर्टिकुलर नॉवल गुनाहों का देवता, इट बिकेम अ क्लासिक, एंड हिज सूरज का सातवां घोड़ा इज कंसिडर्ड अ यूनिक एक्सपेरिमेंट इन स्टोरी टेलिंग एंड वॉज मेड इनटू अ नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग मूवी बाय द सेम नेम इन द ईयर 1992 बाय श्याम बेनेगल। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हिज अदर नॉवल्स सच एज अंधा युग, कनुप्रिया, एंड ही ऑल्सो रोट सेवरल पावरफुल शॉर्ट स्टोरीज सच एज बंद गली का आखिरी मकान एंड गुल की बानो।
जी बिल्कुल शगुन, गुनाहों का देवता की आपने बात करी, तो चंदन और सुधा का जो प्रेम था उस कहानी में, जो चाहकर भी पूरा नहीं हो सका, तो आज के जो युवा जो है वो देखते हैं उस कहानी को, वो काफी उनके अंदर एक परछाई सी छोड़ती है कि जब भी उस नॉवल को पढ़ा जाता है तो पता नहीं वो कौन सा युग जो है वो याद आ जाता है। जी बिल्कुल, की तो उस चीज को आज भी अगर हम हमारे युवा देखें तो इस तरह की नॉवल्स मिलना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा उनके बारे में कहा जाता था कि गद्य विद्या के अलावा काव्य विद्या में भी वो काफी परिपूर्ण थे। और उनकी कविता का एक अंश है, भूख खुरेंजी गरीबी को मगर, आदमी के सृजन की ताकत इन सबों की शक्ति के ऊपर, और कविता सृजन की आवाज है, कौन कहता है कि कविता मर गई। तो ये एक बहुत ही अच्छी उनकी कविता रही। जी बिल्कुल, इसके अलावा जो मैं बताना चाहूंगी, गुनाहों का देवता कही जो उपन्यास है उसका आखिरी अंश था, वो बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया। वो था कि जो वाकई मतलब दिल में उतर जाने वाली चीज है, कि वो थी, सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिनती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का साग टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। तो बहुत ही खूबसूरत
डीप एंड प्रोफाउंड
न्यास में जो है वो लिखा है,
सच डीप एंड प्रोफाउंड लाइंस बाय हिम।
और अब आगे बढ़ते हैं और अब याद कर लेते हैं हम लोग जाने माने अभिनेता को। हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की।
यस
जी बिल्कुल, हिंदी फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक रहे ऋषि कपूर। एक बाल कलाकार के रूप में काम कर उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी।
वेल, ही स्टार्ड इन फिल्म सिंस द मिड 1970s टू 1990s सच एज रफू चक्कर, कभी कभी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, सरगम, एंड द लिस्ट इज एंडलेस फरत।
जी इसके अलावा उन्होंने बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा मेरा नाम जोकर में शानदार भूमिका के लिए उन्हें 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्म जो काफी लोकप्रिय रही, जिसमें प्रेम रोग और बॉबी रही, और इसके अलावा
खेल खेल
दामिनी भी थी। जी हाँ,
बहुत कहीं ये वादा रहा, मैनी
फिल्म से। और उसके अलावा हमने एक मेडली तैयार की है उन्हीं के फिल्मों के गानों की, तो आइए सुन लेते हैं।
चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। भमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, भमरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम
तुमसे प्यार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुम.
Well, listeners, we are also remembering Irene Dunne, the actress. She is best known for her comedic roles, though she performed in films of other genres. She starred in about 42 movies, give or take, such as Cimarron, The Screwball, this was a comedy, Theodora Goes Wild, The Awful Truth, Love Affair, and also I Remember Mama.
और अब हम याद कर रहे हैं बंगाली कवि, लेखक तथा फिल्म निर्देशक प्रेमेंद्र मित्र को. इन्होंने बंगाली साहित्य को बहुत सी प्रसिद्ध कृतियां दी. प्रेमेंद्र मित्र के लिखे उपन्यास, कविताएं और बाल साहित्य आदि उनकी बंगाली साहित्य को अमूल्य देन है. सन 1957 में प्रेमेंद्र मित्र को उनकी कविता संग्रह सागर थेके फेरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था.
পিকে গাড়ো হরেক রকম কম বেশি নীল তার মাঝে শূন্যে রান মনাশির সামিল কটা গান চিল সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝি না পিকে গাড়ো হরেক রকম কম বেশি নীল তার মাঝে শূন্যে.
Well, we're also remembering Albert Schweitzer, organist, musicologist, writer, and also theologian, and a physician. He is also the winner of the Nobel Peace Prize in the year 1952 for his altruism, reverence for life, and tireless humanitarian work, which has helped making the idea of brotherhood between men and nations a living one. Musicologist as well as performer, he wrote a biography of Bach in the year 1905 in French, published a book on organ building and playing in the year 1906, and he also rewrote the Bach book in German in the year 1908.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था जाने माने संगीतकार और गायक आदेश श्रीवास्तव का. आदेश श्रीवास्तव को पहला ब्रेक साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म कन्यादान से मिला. 1994 में आओ प्यार करें फिल्म में संगीत देकर बतौर संगीतकार उन्होंने कदम रखा. जल्द ही आदेश ने एक युवा योग्य संगीतकार और गायक के तौर पर अपनी पहचान बना ली.
मेरी आंखों में चुना है तुझको दुनिया देख गई किसका चेहरा.
और शगुन हम अपने श्रोताओं को एक और गाना आदेश श्रीवास्तव को सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्हीं की आवाज थी. आइए सुन लेते हैं.
मोरा पिया मुझसे बोलत द्वार जिया के ओ द्वार जिया के खोलत नहीं.
इसके अलावा रहना है तेरे दिल में, कभी खुशी कभी गम, बागवान और राजनीति में उनका तैयार किया गया संगीत काफी लोकप्रिय हुआ और 5 सितंबर 2015 को कैंसर की बीमारी से जो है उन्होंने हमें दुनिया से अलविदा कह दिया.
वेल वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग डेरियस मिलहोत. इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी टूडे. ही इज अ फ्रेंच कंपोजर, कंडक्टर एंड ऑल्सो अ टीचर. ही वॉज अ मेंबर ऑफ लेस पीस, ऑल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ सिक्स, and one of the most prolific composers of the 20th century. His compositions are influenced by jazz and Brazilian music and make extensive use of polytonality. He is one of the most prolific composers with an opera comprising nearly 450 works. This was his composition, one of his composition, La Création du Monde.
तो इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा. अगर आप हमारे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर.
Also listeners, Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you so much for tuning in. We hope you have a superb day. Namaskar. Namaskar.